अमोघ। बारामती नदी में बहते हिमालय के बर्फीले जल से बाहर निकलते हुए मैंने राख के दो ढेर देखे। उनमें से एक शमशान की चिता भस्म का ढेर था तो दूसरा यज्ञस्थली की पवित्र राख का ढेर था। मेरा शरीर मात्र एक कौपीन से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं मेरी हड्डियों तक जमा रही थी। अवसादयुक्त एक तीव्र उत्कंठा ने मुझे जकड़ लिया। अपने घर से दूर भूखे प्यासे अकेले ठंडी में ठिठुरते हुए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी सारी गवेषणा व्यर्थ जाएगी? मैं आकाश में तारों को निहारने लगा जो एक प्राचीन वटवृक्ष की ओट में झिलमिला रहे थे। रात के पक्षी विषाद भरा गीत गा रहे थे। नदी तट पर जहाँ तहाँ यज्ञ वेदियों में पवित्र अग्नियां सुलग रही थी। घुटनों तक लंबी जटाओं वाले अनेक साधु इन यज्ञ वेदियों में तीव्र गंधयुक्त जड़ी बूटी वाली समीधा से आहुतियां दे रहे थे। अनुष्ठान संपन्न कर वे साधुजन यज्ञ वेदियों की पवित्र गर्म राख मुट्ठी में भर भर कर अपने शरीर पर लपेटने लगे। अपने शरीर को भस्मांकित कर वे उस पवित्र मंदिर की ओर चल पड़े जिसमें प्रवेश पाने के लिए लालायित हो रहा था। पशुपतिनाथ नेपाल में यह सन 1971 की वसंत में ऋतु का मौसम था। आज की रात मानो तीर्थयात्रियों की बाढ़ सी आ गई थी। अभी हाल ही में मैंने किशोरावस्था की दहलीज पार की थी। शिकागो स्थित अपने घर से दूर मैं स्वयं को दुनिया के दूसरे छोर पर खड़ा महसूस कर रहा था और एक ऐसे पवित्र स्थान के आश्रय के लिए तड़प रहा था जहां मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकूं। अभी एक घंटा पहले ही मैं एक प्राचीन मंदिर की तरफ गया था जिसके ऊंचे और विशाल दरवाजों पर मिथकीय सिंहों सर्पों और देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं खचित थीं। आकांक्षायुक्त रोमांच का अनुभव करते हुए मंदिर में प्रवेश हेतु जैसे ही मैंने पत्थर की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ किया एक चौकीदार ने मेरी छाती पर अपने डंडे का आघात कर दिया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी सांस मानो छाती में ही अटक गई। दोनों तरफ पुलिस से संरक्षित वो चौकीदार मेरा रास्ता रोककर जोर से चिल्लाया, तुम विदेशी हो, यहां से निकल जाओ। पगड़ी बांधे उनका मुखिया जो सैनिक वेश में था मेरे सामने आ गया और अंगारों से दहकती हुई लाल आंखें दिखाते हुए उसने डंडे से एक निर्देश पट्ट की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था, विदेशियों का प्रवेश वर्जित, निकल जाओ यहां से। वो गर्जा, अगर तुमने दोबारा प्रवेश करने की चेष्टा की तो बहुत मार खाओगे, जेल में ठूस दिए जाओगे और मैं नहीं जानता कि क्रुद्ध भीड़ तुम्हारा क्या हाल करेगी। अपने अधीनस्थ लोगों को उसने सतर्क रहने का आदेश दिया। हताश हो मैं भटकती हुई नदी तट पर चला आया। आध्यात्मिक सार्थकता की तलाश में मैं बहुत दूर आ गया था। अब मैं वापस नहीं लौट सकता था। साधुओं को देखकर मुझे एक युक्ति सूझ पड़ी। एक बूझती यज्ञवेदी के पास झुककर गर्म राख मैंने अपना हाथ डालकर ले ली। राख से जलते हुए कोयलों को अलग कर कांपते हुए हाथों से मैंने गर्म राख को अपने दुबले शरीर पर मल दिया। उलझी लटों से लेकर नंगे रूखे पैरों तक तीखी गंध से मेरी नासिका जलने लगी। गला रूंध गया और मुख सूख गया। नदी की दाग से मैले हुए सूती वस्त्र के दो टुकड़ों से मैंने अपने शरीर के ऊपरी और निचली अंग को ढककर मैं पुनः मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चला। छाती के भीतर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में डंडा लिए वही चौकीदार पहरा देते हुए खड़े थे, किंतु वे मुझे पहचान न सके और भीतर जाने दिया। प्राचीन वेदिका को घेरे हुए एक विशाल आंगन में मैं जैसे ही मैंने प्रवेश किया मैं सोचने लगा कि यदि यहां पकड़ा गया तो जरूर मारा जाऊंगा। बेतरतीब पंक्तियों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र वेदी का दर्शन पाने के लिए प्रतीक्षारत खड़ी थी। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिल रहा था। पंक्ति में पीछे धैर्यपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करते हुए मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक वही पुलिस वाला जिसने मुझे पहले रोका था मेरे पास से गुजरा। घबराकर मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे राख से लिपे चेहरे की ओर घूरते हुए उसने चिल्लाकर स्थानीय हिंदी भाषा में एक प्रश्न पूछा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं जानता था यदि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में एक भी शब्द बोलूंगा तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा। कोई उत्तर न पाकर तीखी नजरों से पुनः मुझे घूरते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, इस बार कुछ ज्यादा तेज आवाज में। मेरे मन में भयानक विचार कौंधने लगे। वर्षों तक नेपाल की गंदी जेलों में सड़ने या उससे भी कुछ बुरे परिणाम की आशंका उठने लगी। ये समझते हुए कि वो सुरक्षा अधिकारी किसी भी संदेहास्पद स्थिति को भांपने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित है, मैं भी अटकलें लगाने लगा कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मैं भावशून्य चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मस्तिष्क में एक और विचार कौंधा। अपनी एक हथेली से मुंह को ढकते हुए मैंने अपनी दूसरी हथेली को हवा में दाएं बाएं लहराया। कभी न बोलने का मौन व्रत धारण करने वाले मौनी बाबा अक्सर इसी प्रकार अपने व्रत के विषय में लोगों को बताया करते हैं। मुखिया ने मेरी बांह को पकड़ा और मुझे खींचकर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहा था वो मुझे? क्या मैं गिरफ्तार हो चुका था? वो चीखा। पलक झपकते ही दो सिपाही दौड़ते हुए आ पहुंचे। उनके बीच घिरा हुआ तीर्थयात्रियों की भीड़ में मैं तब तक घिसटता रहा जब तक कि उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां सर्वाधिक भीड़ जमा थी। अपने डंडे लहराते हुए मुझे पकड़ने वाले दोनों सिपाही बादलों की तरह गरज रहे थे। क्या सार्वजनिक तौर पर मेरी पिटाई होने वाली थी? क्या अपने पवित्र मंदिर को कलुषित करने के अपराध के लिए ये भीड़ मेरे चिथड़े कर देगी? सिपाहियों की जोर जोर से चिल्लाहट के कारण भीड़ छटने लगी। भयभीत खड़ा मैं प्रतीक्षा कर रहा था। वे लोग मुझे इस भीड़ भड़क्के में घसीटते रहे। इतने में मैंने अपने आप को सीधा वेदी के समक्ष खड़ा पाया। एक रंगारंग पगोड़ा जिसमें चंदन की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। सामने ही पत्थर का एक विशाल वृषभ खड़ा था। वेदी पर भगवान शंकर का एक विशाल विग्रह कढ़ाईदार रेशमी वस्त्र और स्वर्ण तथा बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित शोभायमान हो रहा था। मुख्याधिकारी ने अपनी छड़ी को उठाते हुए मेरी बांह को दबा दिया। क्या वो इस पवित्र मूर्ति के सामने ही मेरी बलि चढ़ाएगा? अपने अधीनस्थ सिपाहियों से घिरे हुए उसने अपनी छड़ी अपने सिर से ऊपर उठाई और पुजारी को चिल्लाते हुए कुछ आदेश दिया। आदेश पाते ही वो सीधे वेदी के भीतर चला गया। कांपते हुए मैं प्रतीक्षा करता रहा। इतने में गर्भगृह के भीतर से लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए एक बड़े पुजारी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने माथे पर लाल सिंदूर का गोलाकार तिलक तथा गले में स्वर्णहार और रुद्राक्ष की माला धारण की थी। गहरे और मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर में उन्होंने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। मुझे लाने वाला अधिकारी, जिसका मोटा शरीर ठंडी के बावजूद भी पसीने से लथपथ हो रहा था, जोर से चिल्लाकर आगंतुक पुजारी को कुछ बोला। पुनः मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बड़े पुजारी ने उसके बातें ध्यान से सुनी, अपना सिर हिलाया, आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। पीछे तीर्थयात्रियों में कोलाहल मचा हुआ था। बड़े पुजारी ने अपनी कमर सीधी करते हुए एक गहरी सांस ली और संस्कृत भाषा में मंत्रों का सस्वर उच्चारण करने लगे। उन्होंने मेरे सिर पर एक रेशमी वस्त्र लपेटकर मुझे अचंभित कर दिया। मेरे कंधे पर एक रेशमी शाल ओढ़ाया और गले में चमेली और रातरानी के फूलों की मालाएं पहना दी। मेरे माथे पर चंदन का तिलक लगाया और केसर मिश्रित जल पीने के लिए दिया। स्तब्ध हो मैंने महसूस किया कि पुलिस वाले मेरे पीछे विशाल भीड़ को रोके हुए थे ताकि मुझे भगवान की पूजा का विशेष अवसर मिल सके और मंदिर की ओर से मेरा सम्मान हो सके। नम्रता से शीश झुकाते हुए उस पुलिस अधिकारी ने हाथ जोड़कर मुझसे आशीर्वाद मांगा और वहां से चला गया। क्या छद्मवेश में देखकर सचमुच उस अधिकारी ने मुझे नहीं पहचाना था? अथवा उसे ज्ञात हो गया था कि मैं कौन हूँ और उसने मेरे दृढ़ निश्चय को आदर प्रदान किया था। ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। चाहे जो भी कारण था, मुझे अत्यंत दीनता का अनुभव हो रहा था। मैंने मानव निर्मित कानून का उल्लंघन किया था और मुझे दंड मिलना चाहिए था, किंतु ईश्वर बड़े दयालु हैं। वेदी के समक्ष खड़ा, अपने भस्मांकित शरीर, मटमैले वस्त्रों और बेतरतीब बिखरी हुई जटाओं पर रेशमी वस्त्र और फूलों का धारण किए, मैंने आंसुओं से भरती अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और ईश्वर के चरणों में मैंने अपने सच्चे मार्गदर्शन के लिए करबद्ध प्रार्थना करने लगा। मैं पुनः नदी तट पर लौट आया और ठंडी जमीन पर बैठ गया। वो अमावस की रात थी। काले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा के एक झोंके ने पूरे जंगल में चमेली की खुशबू बिखेर दी। नीरवता को भंग करते हुए एक उल्लू की कूज सुनाई पड़ी। नीचे बहती लहरों को निहारते हुए मैं विचार करने लगा कि नियति की लहरें अब मुझे आगे कहाँ लेकर जाएंगी। कैसे मैं इस जीवन में प्रविष्ट हो गया जो मेरे प्रारंभिक जीवन से इतना अपरिचित था, किंतु मेरे आत्मा के लिए इतना चिरपरिचित।